स्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का, जो इसराइलियों द्वारा सिने पर्वत से आरंभ की यात्रा को कनान की सीमा मुआब के मैदान तक की यात्रा से जोड़ती है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 11 और 12 को देखा था। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 13 से आरंभ करेंगे और इसका विषय है 12 गुप्तचरों का कनान देश में जाना। इसराइली लोग कादेश बर्निया पहुंचे, जो प्रतिज्ञा देश के किनारे पर है, परंतु खेत से कहना पड़ता है कि उनके अविश्वास के कारण यह उनके लिए युद्ध क्षेत्र बन गया। मित्रों, इस अध्याय में गुप्तचर के भेजने का विवरण हमें मिलता है। गुप्तचरों का चयन, उनकी नियुक्ति, उनका आचरण, गुप्तचरों द्वारा तथ्यों की पुष्टि एवं तथ्यों की व्याख्या के फलस्वरूप रिपोर्ट एक बहुमत द्वारा दूसरी अल्पमत से। आइए अब हम देखते हैं गुप्तचरों के भेजने का कारण। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय उसके 1-3 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया, जो सब के सब इसराइलियों के प्रधान थे। मित्रों, गुप्तचर भेजने का विचार किसका था? क्या यह ईश्वर का विचार था? उसके सोच से भूमि की खोजबीन की गई। हमें परमेश्वर के वचन से सदैव ही संपूर्ण चित्रण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कई बार किसी एक तथ्य को अधिक अथवा दूसरे पर उसी तथ्य को वही महत्वपूर्ण स्थान कम है। उदाहरणतया प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण व्यक्ति के समझने के लिए हमें चारों सुसमाचारों का गूढ़ अध्ययन करना चाहिए। यद्यपि यहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह परमेश्वर का विचार है, वह उनकी विनती के प्रत्युत्तर में है। व्यवस्था विवरण पुस्तक में इस वर्णन को पढ़िए, जिसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय उसके 20-22 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, वहाँ मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो, और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन सा मार्ग होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। मित्रों, इस प्रदेश में गुप्तचर भेजने में परमेश्वर का कोई हाथ नहीं था। गुप्तचर के भेजने से लोगों के एक भाग में भय और निर्बलता प्रकट होती है। संभवतः उनके मन में भय था कि वे देश को जीतने में असमर्थ होंगे। गुप्तचरों के मामले पर बुद्धिमानी से निर्णय लेना अथवा तर्क वितर्क करना बड़ा ही सहज था। तो भी परमेश्वर इसराइल लोगों को उस प्रतिज्ञा वाले देश में ले जाने में उनकी अगुवाई कर रहा था। गुप्तचरों के लिए उनकी विनती से उनके भाग में विश्वास की कमी प्रकट होती है। इससे परमेश्वर पर उनका विश्वास दृढ़ नहीं दिखता। मित्रों, परमेश्वर स्वयं ही उस देश की पूरी छानबीन कर चुका था। वह उसके बारे में सब कुछ जानता था। वह उन्हें उस देश में कदापि नहीं ले जाता यदि उसको वे जीत नहीं सकते। अंतिम समय में जब वे उस देश में प्रवेश किए, दैत्य तो उस वक्त भी वहां मौजूद थे। सब कठिनाइयां और समस्याएं भी थी, पर उन्होंने उस देश को जीत लिया। मेरे मित्रों, हमारे लिए आज के दिन कितना महत्वपूर्ण यह संदेश है। क्या हम विश्वास के जरिए जीवित हैं, अर्थात चल रहे हैं? निसंदेह हमें सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु एक समय है जब हमें अपने आप को पूर्णतया प्रभु के हाथों में सौंप देना है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो सब कुछ हो जाएगा। भजन संहिता 37 उसका 5 पद। आपको और मुझे अर्थात हम सबको एक ऐसा स्थान पर पहुंचना चाहिए जहां अपना मार्ग और अपना सब कुछ अर्थात संपूर्ण चीजें उसे पूर्णतया सौंप दें। मित्रों, वे लोग उस स्थान तक पहुंचे परंतु परमेश्वर पर विश्वास नहीं रख सके। उनके समक्ष अर्थात उनके आगे क्या है, इस बात को जानने के लिए उन्होंने गुप्तचर भेजे। यह एक दूसरा स्थान है जहां परमेश्वर उसके लोगों की इच्छा की अधीन बात मान लेता है। इसके पूर्व कि उनके बारे में ऐसा लिखा जाए, हम भजन संहिता 106 उसके 15 में पढ़ते हैं, उसने उनकी मांग को पूरा किया परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। इस बार प्राण सुखाने से भी बुरा होने वाला है। उनके परमेश्वर पर विश्वास और विश्वास की कमी दिखाने के पश्चात उनकी विनती सुनकर उनकी विनती के अनुसार वह गुप्तचरों को उनके मिशन कार्य पर जाने की आज्ञा देता है कि यह सब कुछ शुद्ध और नियोजित ढंग से किया जाए और प्रत्येक गोत्र का एक प्रधान गुप्तचर बनकर जाए। अब हम आगे देखते हैं गुप्तचरों का चयन। गुप्तचरों की एक सूची यहाँ उपलब्ध है, उनमें से केवल दो में हमारी रुचि है। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय उसके 6 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब, इस्साकर के गोत्र में से योसेफ का पुत्र यिगाल, एप्रेम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे। मित्रों, यहाँ पर नून का पुत्र होशे यहोशुआ है। अल्पमत की रपट देने वाले इन दो गुप्तचरों के विषय आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। गुप्तचरों की नियुक्ति हम देखते हैं 13 अध्याय उसके 17 से 20 पद में लिखा हुआ है, उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं व निर्बल, थोड़े हैं व बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं सो कैसा है, अच्छा व बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं और तंबुओं में रहते हैं व गढ़ व किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ या बंजर, और उसमें वृक्ष हैं व नहीं, और तुम या बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ भी ले लेना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब गुप्तचरों को भेजा जाना है, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है और अब वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अब हम आगे देखते हैं गुप्तचरों का आचरण। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, सो वे चल दिए और सीन नाम जंगल से ले राहोब तक जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। हमात उस प्रदेश के पूर्व कोने पर था। गुप्तचरों का कार्य प्रशंसनीय रहा है। वास्तविकता तो यह है कि वे प्रतिज्ञा देश के अंदर नामक पुस्तक भी लिख सकते थे। उसके बारे में उन्हें इतना ज्ञात हुआ, उन स्थानों पर जहां वे गए और उनकी भेंट अनक के वंशज से भी हुई जो दानों से निकले थे। हम गिनती की पुस्तक 13 अध्याय उसके 22 से 25 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, सो वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए, वहां अहिमान शीशय और तलमय नाम अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन तो मिस्र के सोवन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नाम नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और दो मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इसराइली वहां से जो दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। मित्रों, हम देखते हैं कि जैसे हमारे अनुवाद से ऐसा लगता है कि दो पुरुष केवल एक गुच्छा अंगूर लाद कर लाए, सचमुच कम से कम ये लच्छेदार रसीले अंगूर थे जिन्हें वे लाठी में लटका कर दो व्यक्ति कांधी पर लेकर आए थे। अब हम आगे देखते हैं तथ्यों की पुष्टि। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय उसके 26 और 27 पद में लिखा है, और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इसराइलियों की सारे मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारे मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। यहाँ पर उनकी रिपोर्ट अर्थात उनकी बातों ने इस बात की पुष्टि की कि ईश्वर ने सही बताया था कि उस देश में दूध और मधु की धारा प्रवाहित है। अब हम आगे देखते हैं तथ्यों की गलत व्याख्या। गिनती 13 अध्याय उसके 28 और 29 पद में लिखा है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं, और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा है। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। यह सब सच था। उस देश में दानव थे, नगर महान और सुदृढ़ था। उनके तथ्य सही थे पर उनकी व्याख्या करने में वे भटक गए थे। हम गिनती 13 उसके 31 और 33 पद को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल और लंबे चौड़े थे। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। मित्रों, जब आप भयभीत हैं और आपका विश्वास डामाडोल हो, कठिनाइयां, समस्याएं और परिस्थितियां भयंकर प्रतीत होती हैं, तो वास्तव में वे असलियत से बड़ी दिख पड़ती हैं। वे दानव थे पर उन मनुष्यों ने उनको बढ़ा चढ़ाकर बताया कि आम आदमी डर जाए। कितना रोचक और तुलनात्मक वर्णन उन्होंने किया है दानवों और टिड्डों में। क्या आप जानते हैं कि वे क्या भूले? उन्होंने परमेश्वर को बिल्कुल बाहर रखा। यदि उन्होंने परमेश्वर को इस तस्वीर के अंदर रखा होता तो सारी कहानी ही बदल गई होती। तथ्यों की सही व्याख्या। आइए हम पढ़ें गिनती 13 उसके 30 पद में लिखा हुआ है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। मित्रों, अल्पमत की रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। कालेब ने अपनी रिपोर्ट सुनाई पर अन्य लोगों से असहमति जताई। केवल यहोशू कालेब से सहमत था। इस प्रकार पूरी तस्वीर उभरी। जहां तक तथ्यों का प्रश्न है, रिपोर्ट ठीक थी परंतु तथ्यों की व्याख्या में दो मत थे। अल्पमत की रिपोर्ट थी, आओ हम उस देश पर तुरंत चढ़ाई करें और उसको अपने अधिकार में कर लें क्योंकि हम उस पर विजय पाने में समर्थ हैं, और जो अधिक लोग हैं उनके रिपोर्ट में था, हम उन लोगों के विरुद्ध चढ़ाई करने में असमर्थ हैं। लोगों को बहुमत रिपोर्ट पर विश्वास था। उन्हें विश्वास नहीं था कि वे विजय प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाए अर्थात ईश्वर पर विश्वास की कमी की। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 14 से आरंभ करेंगे और इस अध्याय का विषय है इसराइलियों का अविश्वास के कारण प्रवेश में इनकार। तो आगे देखते हैं, इसराइली अब उस स्थान पर थे जहां उन्हें निर्णय लेना था वे देश में प्रवेश करें अथवा नहीं। इसराइल प्रवेश करने से इनकार कर देते हैं। अविश्वास ही इसका कारण था। बाइबल स्वयं की सबसे अच्छी टीका करती है। इब्रानियों का लेखक उसका वर्णन इस प्रकार से करता है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 17 से 19 पद में, वह किन लोगों से 40 वर्ष तक क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और जिनके शव जंगल में पड़े रहे? उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाओगे? क्या उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी? अतः हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण ही वे प्रवेश करने ना पाए। मित्रों, देश में प्रवेश न करने का कारण उनका अविश्वास था। आइए अब हम आगे देखते हैं इसराइल का देश में प्रवेश से इनकार। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसके एक पद में इस प्रकार से लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। उस संध्या उनमें चिल्लाहट और कुड़कुड़ाना था। उसके बाद आगे देखते हैं 14 के दो पद में लिखा है, और सब इसराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते व इस जंगल ही में मर जाते। यहाँ पर ऐसे समय में मेरे विचार से मूसा और हारून सोचते थे कि अच्छा होता कि वे जंगल में ही मर गए होते, ताकि उनकी लगातार कुड़कुड़ाना और शिकायतें हमें नहीं सुननी पड़ती। तब हम आगे 14 उसके तीन पद में पढ़ते हैं, और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि अपने ही मुख से कहते, हमारी पत्नियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। मित्रों, वे अपने बच्चों को अपनी आड़ बनाते हैं, यह बहाना बनाते हैं कि मानो उनकी सुरक्षा की चिंता है, परंतु वास्तव में परमेश्वर पर छींटाकसी करते हैं। मानो यह कह रहे हैं कि परमेश्वर को कोई चिंता नहीं कि उनके बच्चों का क्या होगा। क्या आपको पता है कि देश में प्रवेश किन्होंने किया? उनके यही बच्चे, एक नई पीढ़ी जो थे। बूढ़े लोग चिल्लाकर कहते कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं, पर परमेश्वर ही उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाता है। अब हम गिनती 14 उसके 4 से 9 पद में पढ़ते हैं, फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र की ओर लौट चलें। तब मूसा और हारून इसराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, और नून का पुत्र यहोशू और युपुने का पुत्र कालिब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचा कर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। कालेब और यहोशू, यह दोनों पुरुषों ने उन्हीं तथ्यों को पेश किया जो दूसरों ने किया था, परंतु उनकी यह सूचना या रिपोर्ट उनसे फर्क है। अंतर केवल व्याख्या में है, क्योंकि उन्होंने तथ्यों के बीच परमेश्वर को भी रखा है। मेरे मित्र, जब आप दानों के बीच अपने को टिड्डी के समान पाते, तो यहाँ भी ऐसा ही है कि आपको परमेश्वर के निकटता में आना चाहिए। कालेब और यहोशू ने ऐसा ही किया, और वे जोर देकर कहने लगे, यदि परमेश्वर प्रसन्न होंगे तो वे देश में पहुंचाएंगे। परंतु परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा जब तक कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे? उन्हें भरोसा करना होगा। हमारे मुहावरे में हम उन्हें दांतों से चबा जाएंगे, या उस देश के लोगों को हम बत्तख सोरबा के समान पी जाएंगे। उन्हें इतना भरोसा या विश्वास कहां से मिला? क्योंकि उनका परमेश्वर पर अटूट विश्वास था। हम गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसके 10 में पाते हैं, क्या आपने देखा जब कभी उनमें विद्रोह, बड़बड़ाना या शिकायत होती कि प्रभु की महिमा भी प्रकट होती थी? परमेश्वर ने उसके विरोध विद्रोह पर अप्रसन्नता व आपत्ति जताई। हम 14 अध्याय उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा, और तुझ से एक जाति उपजाऊंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। परमेश्वर का कथन है, मैं उनको मरी से मारूंगा और मीरास से वंचित कर दूंगा, और तुझ से एक ऐसी जाति उत्पन्न करूंगा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। तब हम गिनती 14 उसके 13 से 19 पद में पढ़ते हैं, मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कृति सुनी है वे कहेंगे कि यहोवा उन लोगों को उस देश में से जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला। सो अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। मूसा परमेश्वर को याद दिलाता है कि यह भ्रम फैलेगा कि मिस्र देश से निकालने में आप समर्थ रहे परंतु देश देने में समर्थ नहीं ठहरे, जो काम आरंभ किया उसे आप पूरा न कर सके। परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करने की सहमति दी कि इसराइल को देश में पहुंचाएंगे। तब हम आगे पढ़ते हैं गिनती 14 उसके 20 पद में, यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। मेरे मित्रों, अब हम देखते हैं कि जैसे मूसा ने परमेश्वर से निवेदन किया वैसे ही उसने भी जवाब दिया और तब परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी की। हम गिनती 14 उसके 21 पद में पढ़ते हैं, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। जिस प्रकार परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र देश से निकालकर प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचाया, उसी प्रकार परमेश्वर उस योजना को भी पूरा करेगा जो उसने आपको बचाने के समय में किया है। आपको बचाया, संपूर्ण धरती पर भी एक योजना पर वह कार्यरत है, क्योंकि समय दूर नहीं कि सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर हो जाएगी। आइए अब हम आगे देखें परमेश्वर का न्याय अर्थात दंड। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसके 22 से 24 पद में, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइली वंशज पर न्याय अर्थात दंड गिरता है। कुड़कुड़ाने वाली पीढ़ी प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं करने पाएगी। लोगों के मध्य से केवल कालेब और यहोशू दो व्यक्ति ही जा सके। ईश्वर ने प्रतिज्ञा की और उसे पूरा भी कर दिया। हम गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसके 29 से 32 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है तुम्हारी लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी और तुम सब में से 20 वर्ष की व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उस देश में बसाऊंगा, परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि ये लूट में चले जाएंगे उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना, परंतु तुम लोगों की लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी। मित्रों, उनके वे बालक जिनके कारण परमेश्वर पर दोष लगाया कि उनकी सुरक्षा नहीं करता, प्रतिज्ञा के देश में सुरक्षित प्रवेश किए जिस देश को उन्होंने तुच्छ ठहराया था। अब हम आगे पढ़ते हैं गिनती 14 उसके 33 से 35 पद में, लिखा है और जब तक तुम्हारी लोथें जंगल में न गल जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे एक वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरोध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निस्संदेह ऐसा ही करूँगा भी। परमेश्वर ने उन्हें बताया कि उन्हें जंगल में 40 वर्ष तक घूमते रहना होगा। गुप्तचर का एक दिन जो उसने देश में गुजारा इसराइली के लिए एक वर्ष अर्थात 40 दिन 40 वर्ष बन गए। हम गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसके 36 और 37 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। मित्रों, 10 गुप्तचर जो बुरी रिपोर्ट तथा विद्रोह किए एक मरी के शिकार में मरे। अमालेकी व कनानी लोगों से इसराइलियों की हार। आइए हम आगे पढ़ें, गिनती 14 उसके 39 पद में, तब मूसा ने ये बातें सब इसराइलियों को कह सुनाई और वे बहुत बिलाप करने लगे। वे प्रतिज्ञा देश के विमुख हुए और अपना मुख निर्जन प्रदेश की ओर फेरा। अब वास्तव में वे जंगल से अधिक भयभीत थे बजाय इसके कि वे डर से उस प्रतिज्ञा के देश की ओर जाएं, या जो डर उन्हें प्रतिज्ञा देश से हुआ था। हम आगे देखते हैं गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसके 40 से 42 पद में, और वे बिहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। उन्होंने अपने जीवन का सुनहरा अवसर खो दिया। वे उस देश में प्रवेश नहीं करने पाए जहां परमेश्वर ने उन्हें भेजना चाहा था। अब वे ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। यह कोरी कल्पना है, विश्वास कपोल कल्पना नहीं है। पुनः अपनी इच्छा पर चलना चाहते हैं और परमेश्वर की इच्छा का तिरस्कार करना चाहते हैं। जब तक हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन नहीं होते, हमारे लिए कोई विजय या सफलता संभव नहीं है। हम गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसके 44 और 45 पद में पढ़ते हैं, परंतु वे ठिठई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से न हटे। तब अबीमेलेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होर्मा तक उनको मारते चले गए। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और वे स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। इसके प्रतिफल में हम देखते हैं कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मित्रों, आज यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं तो निश्चय ही हम भी हार का सामना करेंगे। आइए आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और उसकी इच्छा के अनुसार चलें। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा